आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि मगरी बंगाल और तमिलनाडु में जहां जुमेरात को वोटिंग हुई थी, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश नहीं की गई है। मरकज ने बेमौसम बरसात से मुतासरा किसानों की मदद के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर गेहूं की सरकारी खरीद के निशाने में इजाफा किया है। आरबीआई ने पेटीएम अदायगियों के बैंक का बैंकिंग लाइसेंस मनसूख कर दिया है। अमरीका ने चीन में कायम तेल रिफाइनरी जहाजरानी की उन कंपनियों और टैंकर्स पर बंदिशें आयद कर दी हैं जो ईरान का तेल लाने ले जाने में सरगर्म हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जिससे मगरबी एशिया में जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ दूसरे दौर की बातचीत की उम्मीद पैदा हो गई है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने मगरी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 44,376 पोलिंग मराकज पर हुई वोटिंग के बारे में कहा है कि कमीशन ने किसी भी मरकज पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश नहीं की है। इससे यह बात जाहिर होती है कि वोटिंग का अमल वसी तौर पर पुरअमन रहा। कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल किसी बड़ी रूकावट के बगैर अंजाम दिया गया, जिसके सबब किसी भी पोलिंग मरकज पर दोबारा पोलिंग की जरूरत नहीं है। यह फैसला करने से पहले कमीशन ने मुशाहिदीन से हासिल मालूमात, फील्ड रिपोर्ट समेत जांच पड़ताल के मियारी मैकेनिज्म का गहराई से जायजा लिया। रियासत में पोलिंग के पहले मरहले में 16 जिलों में फैले 152 हलकों का अहाता किया गया और 92.72% पोलिंग दर्ज की गई। दूसरे मरहले के तहत 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमिलनाडु में 75,064 पोलिंग स्टेशनों में से जहां जुमेरात को पोलिंग हुई थी, किसी स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग की सिफारिश नहीं की गई है। ये पोलिंग का अमल बगैर किसी ऐसे वाकये के पूरा हुआ है जिसके लिए किसी भी हलके में दोबारा पोलिंग कराए जाने की जरूरत हो, लिहाजा पोलिंग अमला पूरे शहरी और देही इलाकों में यह अमल बिला रुकावट पूरा कर सका। तमिलनाडु में जुमेरात को जबरदस्त पोलिंग हुई और सभी 234 असेंबली हलकों में 85.14% वोट डाले गए। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा अवामी रैलियों और रोड शोज कर रहे हैं। दूसरे मरहले के तहत 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पूरब बर्धमान के जमालपुर इलाके में, सलीमाबाद तरुण संघा मैदान और हावड़ा में श्यामपुर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वो हावड़ा में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी रियासत में एक इंतखाबी रैली करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा पूरब बर्धमान में विजय परतापुर में एक विजय संकल्प यात्रा की क्यादत करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी हुगली में श्रीरामपुर, कोलकाता के शहीद मीनार और मेटिया बुर्ज में इंतखाबी रैलियां करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बैनर्जी बशीरहाट और कैनिंग वेस्ट में रैलियों से खिताब करेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में बाली में रोड शो करेंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में जारी असेंबली इंतखाबात के दौरान मुबैना बदसलूकी और गैर जानबदारी बरकरार रखने में नाकामी पर 5 पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। मुअत्तल किए गए अफसरान में डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी संदीप गराई, सब डिवीजनल पुलिस अफसर एसडीपीओ सजल मोंडल, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज मौसम चक्रवर्ती, फालता पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज अजय बाग और उस्थी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर इंचार्ज सुबेच्छा बेग शामिल हैं। इन अफसरान के खिलाफ महकमा जाति कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 29 अप्रैल को रियासत में कुल 142 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। हलके की खसूसियात से मुतालिक अपनी सीरीज के तहत आज हम पूर्व बर्धमान जिले के मोंटेश्वर हलके का जायजा लेंगे।
पूर्व बर्धमान जिला के मोंटेश्वर हलके में रियासत के असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहां तृणमूल कांग्रेस के सिद्दीकुल्ला चौधरी मौजूदा एमएलए हैं। दो आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 8 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी ने सैकत पांजा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तृणमूल ने सिद्दीकुल्ला चौधरी को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपीआईएम के अनूप घोष और कांग्रेस के ज्योतिर्मोय मंडल इस सीट के उम्मीदवार हैं। नामजदगी की आखिरी तारीख के मुताबिक वोटरों की कुल तादाद 217,000 है। सभी सियासी पार्टियां इस हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी रखे हुए हैं। शिमाली बर्धमान के किसानों को उनके आलू की कीमत नहीं मिल रही है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की जानिब से दूसरी रियासतों को आलू की बरामद पर पाबंदी इस मसले की अहम वजह है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की परेशानी को कम करने के लिए आलू की खरीदारी कर रही है, जबकि बायां महाज और कांग्रेस ने आलू की काश्त करने वाले किसानों की दुश्वारियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा दरअंदाजी, बेरोजगारी, खवातीन की हिफाजत इन इंतखाबात में उठाए जाने वाले अहम मामलात हैं। कोलकाता से कल्याण लाह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
मरकजी हुकूमत ने कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद के निशाने में 15% का इजाफा किया है, जिसके बाद ये मकदार रवां मौसम के लिए 3,45,00,000 टन हो गई है, जबकि पहले का मंसूबा 3,00,00,000 टन का था। खुराक के सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि इस फैसले का मकसद उन किसानों की मदद करना है जिनकी फसलों को बेमौसम बरसात की वजह से नुकसान पहुंचा है। नई दिल्ली में भारत की चक्की की कंपनियों की फेडरेशन के गेहूं के सालाना जायजे के इजरा की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब चोपड़ा ने कहा कि रियासतवार खरीदारी के निशाने में भी इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से यह खरीदारी उम्मीद है कि 1,00,00,000 टन होगी, उत्तर प्रदेश से यह खरीदारी 25,00,000 टन होगी, राजस्थान से 23,50,000 टन और उत्तराखंड से 5,000 टन की जाएगी। इस साल दिल्ली से भी कुछ गेहूं खरीदा जाएगा। हुकूमत ने इस बात का इरादा किया है कि मुल्क के फर्टिलाइजर का शोबा मुस्तहकम और बेहतर तौर पर मुनज्जम है और तमाम अहम खादों की सप्लाई मांग के मुताबिक बरकरार है। फर्टिलाइजर की वजारत के एक माहिरीन के मुताबिक हालिया किल्लत के दावे हकीकत पर मबनी नहीं है। वजारत ने कहा कि रबी 2025-26 सीजन और हालिया मुद्दत के आदादोशुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुल्क भर में फर्टिलाइजर की दस्तयाबी खातिर ख्वाह जखायर के साथ मुस्तहकम है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम अदायगियों के बैंक का बैंकिंग लाइसेंस मंसूख कर दिया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि बैंक को फौरी तौर से मना कर दिया गया है कि वो कोई कारोबार ना करे। आरबीआई ने अलबत्ता वजाहत की है कि पेटीएम अदायगियों के बैंक के पास इतनी नकद रकम मौजूद है कि वो अपने कामकाज को बंद करने पर अपने पूरे जमा बकायाजात की अदायगी कर सके। आरबीआई ने मजीद बताया कि यह कदम मार्च 2022 के उसके हुक्म के जिम्न में उठाया गया है, जिसमें बैंक को हिदायत दी गई थी कि वो 2024 के अवाइल में कारोबार पर आयद इजाफी बंदिशों के बाद नए सारिफिन से कारोबार रोक दे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के शहर जयपुर का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 35वें जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगे। इसके अलावा नायब सदर जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले 23वें कैंसर सर्वाइवर्स डे प्रोग्राम में भी शरीक होंगे। अमरीका ने चीन में कायम एक बड़ी तेल रिफाइनरी और जहाजरानी की तकरीबन 39 कंपनियों व टैंकरों पर इक्तसादी बंदिशें आयद कर दी हैं, जो ईरान का तेल लाने ले जाने में सरगर्म हैं। इस कदम का ऐलान कल रात किया गया। इससे पहले एक वसीतर इंतबाह जारी किया गया था कि दूसरे मरहले की ये बंदिशें उन कंपनियों पर आयद की जाएंगी जो ईरान के साथ कारोबार कर रही हैं। जिन कंपनियों पर ये बंदिशें आयद की गई हैं उनमें डेलियान में हैंगली पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी भी शामिल है, जो चीन की सबसे बड़ी और आजादाना काम करने वाली रिफाइनरियों में से एक है, जहां तकरीबन 4,00,000 बैरल तेल रोजाना साफ किया जाता है। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा है कि रिफाइनरी 2023 से ईरान का खाम तेल हासिल कर रही थी और ईरान की फौज के लिए इसने लाखों डॉलर की आमदनी की है। इसी दौरान अमरीका आबनाए हुरमुज में नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराखची कल देर रात एक सीनियर वफद के साथ पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। उनके इस दौरे से ईरान और अमरीका के दरमियान नए सिरे से मुजाकरात शुरू करने की सिफारती कोशिशों का इशारा मिलता है, ताकि मगरबी एशिया में जंग खत्म की जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
ईरान के वफद में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी शामिल हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजाहत की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मीटिंग का मंसूबा नहीं है। انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بجائے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ایران کے نظریات اور تشویش سے واقف کرایا جائے گا۔ امریکہ سفارتی رسائی حاصل کرنے کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے، جس کے تحت امید ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے اس کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات چیت براہ راست کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ ایران امریکی مطالبات کو پورا کرنے کے مقصد سے ایک پیشکش کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ امید ہے کہ پاکستان میں امن بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی بھی امکانی معاہدے میں یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے کہ ایران اپنی افزودہ یورینیم کو ترک کر رہا ہے اور آبنائے ہرمز کے راستے تیل کے جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنا رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں کی اس وقت تک ناکابندی جاری رکھے گی جب تک کوئی معاہدہ نہ ہو جائے۔ ایران کے وفد میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بھی شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے ایران سے روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ وہ دو طرفہ معاملات اور علاقائی حالات و واقعات پر صلاح مشورے کے لیے پاکستان، عمان اور روس کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ان ملکوں کے ساتھ قریبی تال میل رکھا جا سکے۔ نیوز ڈیسک سے آشیش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
لبنان کے جنوبی حصے پر اسرائیلی فضائی حملوں میں لبنان میں 6 افراد ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کیے جانے کے اعلان کے ایک دن کے بعد ہی کل اسرائیلی افواج اور ایران کی پشت پناہی والے حزب اللہ جنگجوؤں نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا کہ اس نے یاتر اور کفرہ میں حزب اللہ کے راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا، جو اسرائیلی شہریوں اور فوج کے لیے خطرے کا سبب تھے۔ آکاشوانی پرسار بھارتی نے مائی گوف کے ساتھ مل کر ملک بھر کے شہریوں کو سگنیچر ٹیون بنانے کے مقابلے میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ یہ دھن آکاشوانی ایڈ 90 دا نیو ردم آف بھارت، یعنی آکاشوانی کے 90 سال بھارت کی نئی تال کے موضوع پر تیار کی جائے گی۔ اس کا مقصد آکاشوانی کے خصوصی پروگراموں کے لیے ایسے سازینے تیار کرنا ہے جن سے منفرد انداز کے اس مواد اور اس کے سامعین کی عکاسی ہوتی ہو۔ یووانی اور اسپورٹس کین کے لیے سگنیچر ٹیون زور اور تال پر مبنی ہونی چاہیے۔ مارکیٹ منتر کے لیے دھن پیشہ ورانہ، ٹیکنالوجی پر مرکوز اور نفیس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پہلا انعام 30,000 روپے، دوسرا انعام 20,000 روپے اور تیسرا انعام 10,000 روپے ہوگا۔ اس کے علاوہ 5,000 روپے کے 10 کنسولیشن پرائزز بھی دیے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں گزشتہ رات بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ 206 رن کے تعاقب پر نشانے کا تعاقب کرتے ہوئے بنگلورو کی ٹیم نے 18 اوورز 5 گیندوں میں ہدف حاصل کر لیا۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں سپہر 3:30 بجے دلی کیپٹلز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ ایک دوسرے میچ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات جوہانسبرگ کے وانڈررز اسٹیڈیم میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے T20 میچ میں میزبان جنوبی افریقہ کا مقابلہ کرے گی۔ میچ رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔
شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ راجیہ سبھا ممبران کے بی جے پی میں شامل ہونے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے راگو چڈھا، سندیپ پاٹھک اور اشوک متل باضابطہ طور پر بی جے پی میں شامل، کل 7 ممبران کے ساتھ بی جے پی میں انضمام کا دعویٰ۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمراج چودھری ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب، روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق ابھرتے سائبر خطرات پر وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو کی اعلیٰ سطحی میٹنگ، روزنامہ پرتاب نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں جہاں جمعرات کو ووٹنگ ہوئی تھی، کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کی سفارش نہیں کی گئی ہے۔ مرکز نے بے موسم برسات سے متاثرہ کسانوں کی مدد کے لیے کم سے کم امدادی قیمت پر گیہوں کی سرکاری خرید کے نشانے میں اضافہ کیا ہے۔ آر بی آئی نے پی ٹی ایم ادائیگیوں کے بینک کا بینکنگ لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ امریکہ نے چین میں قائم تیل ریفائنری جہازرانی کی ان کمپنیوں اور ٹینکرز پر بندشیں عائد کر دی ہیں جو ایران کا تیل لانے لے جانے میں سرگرم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ دوسرے دور کی بات چیت کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔